नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की। पहली अप्रैल से 30 सितंबर तक घरों की गणना होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 7 निश्चय 3 के तहत 19 जनवरी से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में होगी जन सुनवाई। प्रदेश की सड़कों को आधुनिक बनाने के लिए होगा AI तकनीक का इस्तेमाल। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना का पहला चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तय कार्यक्रमों के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले स्वयं की गिनती की सुविधा उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट।
देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके तहत ये आंकड़े एंड्रॉइड मोबाइल के साथ साथ iOS वर्जन से एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा करने के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इन कर्मचारियों में एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रधान या जिला जनगणना अधिकारी होंगे। ये लोग आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही निरीक्षण और जनगणना के संचालन की निगरानी करेंगे। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची बनाने के साथ ही इसकी गणना की जाएगी। दूसरे चरण के तहत फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर और बर्फ से ढके हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए जनसंख्या की गणना इस साल सितंबर में की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 12 तारीख को 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले साल 30 अप्रैल को एक बैठक में इस जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया था। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 6.5% थी। GDP के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वृद्धि NDA सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतिगत उपायों के कारण संभव हो रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास, विनिर्माण प्रोत्साहन, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं और व्यापार में सुगमता जैसे क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास एक समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की दिशा में लक्षित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब सरकारी कार्यालयों में अधिकारी आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला और प्रमंडल स्तर पर सभी सरकारी कार्यालयों में संबंधित पदाधिकारी सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को अपने अपने कार्यालय कक्ष में आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसका निष्पादन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगंतुकों से प्राप्त शिकायत दर्ज की जाएगी और इसके निवारण के लिए किए गए प्रयासों की लगातार निगरानी की व्यवस्था भी होगी। श्री कुमार ने कहा कि यह व्यवस्था 19 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने इस संबंध में आम लोगों से 10 जनवरी तक सुझाव भी मांगे हैं। पटना उच्च न्यायालय के 2 नवनियुक्त न्यायाधीश रितेश कुमार और प्रवीण कुमार आज शपथ लेंगे। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 53 स्वीकृत पद हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 10 फरवरी से राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन का महाअभियान चलाया जाएगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पांडे ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फाइलेरिया रोग के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है। अभियान के तहत 19 जिलों में डाईथाइल कार्बामाइजिन DEC और एल्बेंडाजोल की दवाएं दी जाएंगी, जबकि 15 जिलों में आइवरमेक्टिन की अतिरिक्त खुराक भी दी जाएगी। महाअभियान की शुरुआत के 14 दिनों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर दवा देंगे। इसके बाद सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों में विशेष दवा सेवन बूथ लगाए जाएंगे। प्रदेश की सड़कों को अब आधुनिक संधारण के लिए AI तकनीक से बनाया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पटना में आउटपुट और परफॉर्मेंस आधारित सड़क रखरखाव अनुबंध OPRMC 3 को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि इसके तहत 19,327 किलोमीटर लंबी सड़कों के रखरखाव का प्रावधान है। श्री अमृत ने बताया कि प्रति किलोमीटर लंबी सड़क पर 7 वर्षों के लिए 1,22,00,000 रूपये खर्च होंगे। वहीं 6 मीटर तक के पुल पुलियों का पूर्ण संधारण और प्रबंधन गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आने के साथ ही वे परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से एक बार फिर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत में मुख्य रूप से परीक्षा के तनाव से निपटने, शांत तथा आत्मविश्वासी बने रहने और मुस्कुराते हुए परीक्षा देने के तरीकों पर चर्चा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। ठंडी हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। विभाग ने इसे लेकर राज्य के अधिकांश भाग में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है।
8 जनवरी 2026 राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिमी भागों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं शेखपुरा में 5.2 डिग्री, किशनगंज में 5.8 और पटना में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी देर से चल रही हैं। फरक्का एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 2 से 4 घंटे की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंची। इधर पटना हवाई अड्डे से 9 उड़ानें रद्द रहीं, जबकि 22 उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया। दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से कई उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने आपदा प्रभावितों को 24 घंटे के अंदर सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और सजगता के साथ आपदा प्रबंधन कार्य निष्पादित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अग्निकांड पीड़ितों को 10 से 20 दिनों के अंदर राहत राशि का भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के सभी आभूषण दुकानों में हिजाब, नकाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर प्रवेश करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि यह कदम किसी भी धर्म, परंपरा या व्यक्तिगत आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह फैसला सिर्फ सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
हमें ये देखना है कि हम अपने व्यापार को कितना सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आए दिन आपने देखा होगा कई लोगों ने पूरा फुल हेलमेट पहन करके, हिजाब लगा करके या पूरा मुरेठा बांध करके दुकानों में घुसते हैं और वो डकैती कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके उनसे कहेंगे कि अपनी आप आइडेंटिफाई जो है न छिपाएं और अपना चेहरा दिखा करके, दिखाते हुए अपना काम करें। हम आपको अपने आपकी सेवा जो हमारी होती है वो हम जरूर करेंगे।
पूर्णिया जिले के चंपानगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 6 सदस्यों को 4 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। ये सभी अररिया के रानीगंज के रहने वाले हैं। वहीं जिले के चंपानगर और नगर थाना क्षेत्र में डायल 112 वाहन ड्राइवर सहित 4 लोगों को अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है। निगरानी विभाग की टीम ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड में बिजली मीटर लगाने और कनेक्शन जोड़ने के नाम पर 5,000 रूपये रिश्वत लेते हुए लाइनमैन मुनचुन राम और मीटर रीडर निशांत को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में कनीय अभियंता गौतम कुमार फरार है। पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला रोड में एक अनियंत्रित 4-पहिया वाहन ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में सभी गंभीर रूप से घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने वाहन में आग लगा दी और प्रदर्शन किया। किशनगंज जिले में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI की टीम ने सुनार पट्टी रोड में छापेमारी कर एक आभूषण कारोबारी के ठिकाने से भारी मात्रा में तस्करी का सोना जब्त किया है। अब खेल की खबरें। 32वीं बिहार राज्य जूनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 9 और 10 जनवरी को मोतिहारी में किया जाएगा। बिहार बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर ने बताया कि बालक और बालिका वर्ग में राज्य भर की कई टीमें इसमें भाग लेंगी। 5वीं सीनियर नेशनल गोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन 11 जनवरी से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रतियोगिता 13 जनवरी तक आयोजित होगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए निर्देश, पंचायत से सचिवालय तक सोमवार और शुक्रवार को समस्या सुनेंगे अफसर, 19 जनवरी से प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था। दैनिक जागरण लिखता है, इस वर्ष 7.4% की दर से बढ़ेगी देश की GDP। दैनिक भास्कर ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के हवाले से लिखा है, नगर निकायों में सरकारी जमीन कब्जाने वाले माफिया पर कसेगी नकेल। प्रभात खबर लिखता है, 10 स्टेशन के बीच चलेगी राज्य की पहली पटना वाटर मेट्रो, बचेगा समय और पैसा। आज अखबार का शीर्षक है, 57 सब रजिस्ट्रार को इनकम टैक्स का नोटिस, जमीन रजिस्ट्री घोटाले में जांच तेज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक घरों की गणना होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 7 निश्चय 3 के तहत 19 जनवरी से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में होगी जन सुनवाई। प्रदेश की सड़कों को आधुनिक बनाने के लिए होगा AI तकनीक का इस्तेमाल। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।